गरम पंथियों की सफलता। दिसंबर 1915 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ और तिलक तथा एनी बेसेंट के प्रयासों को सफलता मिली। गरमपंथियों को कांग्रेस में वापस लेने का फैसला किया गया। फिरोज शाह मेहता के निधन के कारण बंबई के नरमपंथियों का विरोध बेअसर साबित हुआ। गोखले का भी निधन हो चुका था। गरमपंथियों को कांग्रेस में वापस लाने में तो एनी बेसेंट सफल रहीं, पर होम रूल लीग के गठन के अपने प्रस्ताव पर वह कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मंजूरी नहीं ले सकी। लेकिन स्थानीय स्तर पर कांग्रेस समितियों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रचार कार्यों के उनके प्रस्ताव को कांग्रेस ने मान लिया। लेकिन उन्हें उस समय की कांग्रेस का चरित्र और उसकी ताकत का पता था। वे जानते थे कि कांग्रेस ने इन कार्यक्रमों को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन वह इस पर अमल नहीं करेंगी। इसलिए उन्होंने अपने प्रस्ताव के साथ यह शर्त भी रखी थी कि यदि सितंबर 1916 तक कांग्रेस इन कार्यक्रमों पर अमल नहीं करेगी तो वह खुद अपना संगठन लीग बना लेंगी। तिलक को कांग्रेस में वापस आने का अधिकार मिल गया था और उन्होंने कांग्रेस से किसी तरह का कोई वादा भी नहीं किया था। इसलिए उन्होंने अप्रैल 1916 में बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा कर दी। एनी बेसेंट के समर्थक भी अब कसमसाने लगे। वे सितंबर तक इंतजार करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एनी बेसेंट पर दबाव डालकर होम रूल ग्रुप की स्थापना की अनुमति ले ली। जमुनादास द्वारकादास, शंकरलाल वैंकर और इंदुलाल याग्निक ने बंबई से एक अखबार यंग इंडिया का प्रकाशन शुरू किया और अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में पर्चे निकालने के लिए देश के कोने कोने से चंदा इकट्ठा करने लगे। एनी बेसेंट ने सितंबर तक इंतजार किया। कांग्रेस पूरी तरह निष्क्रिय थी। उन्होंने भी होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा कर दी और अपने समर्थक जॉर्ज अरुंडेल को संगठन सचिव नियुक्त किया। तिलक और एनी बेसेंट ने अपनी अपनी लीग के लिए कार्य क्षेत्रों का बंटवारा भी कर लिया, जिससे कोई गड़बड़ी न हो। तिलक की लीग के जिम्मे आया कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई छोड़कर मध्य प्रांत और बेरार। देश के बाकी हिस्से एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए। इन दोनों ने अपना विलय नहीं किया। कारण बकौल एनी बेसेंट उनके तिलक, कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते थे और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते थे, लेकिन मेरे उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। तिलक ने महाराष्ट्र का दौरा किया, होम रूल आंदोलन का खूब प्रचार किया, जनता को समझाया कि इसकी जरूरत क्यों है और इसके उद्देश्य क्या हैं। उन्हीं के शब्दों में, भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है। समय का तकाजा है कि बाप या पालक इस बेटे को उसका वाजिब हक दे। भारतीय जनता को अब अपना हक लेना ही होगा, उन्हें इसका पूरा अधिकार है। तिलक ने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषाई राज्यों की मांग को स्वराज की मांग से जोड़ दिया। उन्होंने कहा, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ व अन्य भाषाओं के आधार पर प्रांतों के गठन की मांग का अर्थ ही है कि शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा हो। क्या अंग्रेज अपने यहाँ लोगों को फ्रांसीसी में शिक्षा देते हैं? क्या जर्मन अपने लोगों को अंग्रेजी में हो शिक्षा देते हैं या तुर्क फ्रेंच भाषा में शिक्षा देते हैं? 1915 में बंबई के प्रांतीय सम्मेलन में तिलक ने गोखले के निधन पर शोक प्रस्ताव रखा। वी अलूर इसका समर्थन करने के लिए जैसे ही खड़े हुए, तिलक ने कहा, कन्नड़ भाषा का अधिकार जताने के लिए कन्नड़ में बोलिए। इससे पता चलता है कि तिलक में क्षेत्रीय या मराठी संकीर्णता नहीं थी। गैर ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व और छुआछूत के मामले में तिलक जातिवादी नहीं थे। महाराष्ट्र के गैर ब्राह्मणों ने एक बार जब सरकार को अलग से ज्ञापन भेजा और कहा कि उन्नत वर्णों की मांगों से उनका कोई संबंध नहीं है, तो कई लोगों ने इसका विरोध किया। लेकिन तिलक ने इन विरोध करने वालों को समझाया, आप लोग धैर्य से काम लीजिए। यदि हम उन्हें यह समझा सके कि हम उनके साथ हैं और उनकी मांगों और हमारी मांगों में कोई फर्क नहीं है, तो मुझे पक्का विश्वास है कि असमानता मिटाने के लिए छिड़ा उनका आंदोलन हमारे संघर्ष से जुड़ जाएगा। उन्होंने गैर ब्राह्मणों को समझाया कि झगड़ा ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों का नहीं है, भेद शिक्षित और अशिक्षित के बीच है। ब्राह्मण गैर ब्राह्मण की तुलना में ज़्यादा शिक्षित है, इसलिए गैर ब्राह्मण की वकालत करने वाली सरकार भी मजबूर होकर सरकारी नौकरियों में ब्राह्मणों को ही भर्ती करती है। सरकार ब्राह्मणों के प्रति अपने निरंकुश रवैये के बावजूद उन्हें प्रशासन में जगह दे रही है, क्योंकि वह मानती है कि पढ़े लिखे लोग ही प्रशासन चला सकते हैं। छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था कि यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तिलक के उस समय दिए गए भाषणों में कहीं से भी धार्मिक अपील नहीं झलकती। होम रिल की मांग पूरी तरह धर्मनिरपेक्षता पर आधारित थी। तिलक का कहना था कि अंग्रेजों से विरोध का कारण यह नहीं है कि वे किसी दूसरे धर्म के अनुयायी हैं, उनका विरोध तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि वे भारतीय जनता के हित में कोई काम नहीं कर रहे हैं। तिलक के शब्दों में, अंग्रेज हो या मुसलमान, यदि वह इस देश की जनता के हित के लिए काम करता है तो वह हमारे लिए पराया नहीं है। इस परायेपन का धर्म या व्यवसाय से कोई रिश्ता नहीं है, यह सीधे साधे हितों से जुड़ा प्रश्न है। तिलक ने 6 मराठी और 2 अंग्रेजी पर्चे निकालकर अपने प्रचार कार्य को और तेज कर दिया। इन पर्चों की 47,000 प्रतियां बेची गई। बाद में इन पर्चों को गुजराती और कन्नड़ में भी छापा गया। लीग की 6 भाषाएं बनाई गई। मध्य महाराष्ट्र, बंबई नगर, कर्नाटक और मध्य प्रांत में 1-1 तथा बेरार में 2। होम रूल आंदोलन ने जैसे ही जोर पकड़ना शुरू किया, सरकार ने दमनात्मक कार्रवाइयां तेज कर दी। इस आंदोलन पर वार करने के लिए सरकार ने एक विशेष दिन चुना, 23 जुलाई 1916। तिलक का 60वां जन्मदिन था। एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया और तिलक को 1,00,000 रुपये की थैली भेंट की गई। सरकार ने भी इस अवसर पर इन्हें इनाम दिया। उन्हें एक कारण बताओ नोटिस दिया गया जिसमें लिखा था कि आपकी गतिविधियों के चलते आप पर प्रतिबंध क्यों न लगा दिया जाए। उन्हें 60,000 रुपये का मुचलका भरने को कहा गया। तिलक के लिए शायद यह सबसे महत्वपूर्ण उपहार था। उन्होंने कहा कि हम अब होम रूल आंदोलन जंगल में आग की तरह फैलेगा, सरकारी दमन विद्रोह की आग को और भड़काएगा। तिलक की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में वकीलों की एक पूरी टीम ने मुकदमा लड़ा। मजिस्ट्रेट की अदालत में तो तिलक मुकदमा हार गए, पर नवंबर में हाईकोर्ट ने उन्हें निर्दोष करार दिया। इस जीत की अब सभी ओर से सराहना हुई। गांधी के यंग इंडिया अखबार ने लिखा, यह अभिव्यक्ति की आज़ादी की बहुत बड़ी जीत है, होम रूल आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। इस अवसर का तिलक ने भी फायदा उठाया और अपने सार्वजनिक भाषणों में कहने लगे कि होम रूल या स्वशासन की मांग व्यक्त करने के लिए सरकार ने अनुमति दे दी है। तिलक और उनके सहयोगियों ने प्रचार कार्य तेज कर दिया और अप्रैल 1917 तक उन्होंने 14,000 सदस्य बना लिए। एनी बेसेंट की लीग ने भी सितंबर 1916 से काम शुरू कर दिया, पर उनका संगठन बहुत ढीला था। कोई भी 3 व्यक्ति मिलकर कहीं भी शाखा खोल सकते थे, जबकि तिलक की लीग का संगठन बहुत मजबूत था। सभी 6 शाखाओं के काम और कार्य क्षेत्र निर्धारित थे। एनी बेसेंट की लीग की 200 शाखाएं थी। कुछ शाखाएं कस्बों और नगरों में थी, बाकी गाँवों में। एक शाखा के तहत कुछ एक गांव ही आते थे। हालांकि कार्यकारी परिषद का चुनाव किया जाता था, लेकिन सारा काम एनी बेसेंट और उनके सहयोगी अरुणडेल, सीपी रामास्वामी अयर तथा वीपी पाडिया देखते थे। सदस्यों को निर्देश देने का कोई संगठित तरीका नहीं अपनाया गया था। या तो व्यक्तिगत रूप से सदस्यों को निर्देश दिए जाते, या फिर न्यू इंडिया में अरुणडेल के लेखों को पढ़कर लोग जानते थे कि उन्हें क्या करना है। एनी बेसेंट की लीग तिलक की लीग की तुलना में सदस्य बनाने में भी पीछे रही। मार्च 1917 तक उनकी लीग के सदस्यों की संख्या केवल 7,000 थी। जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद, बी चक्रवर्ती और जे बनर्जी कलकत्ता भी इसमें शामिल हो गए। फिलहाल शाखाओं की गिनती से लीग की ताकत का अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि इनमें से कुछ तो काफ़ी सक्रिय थी और कुछ निष्क्रिय, क्योंकि वे ज़्यादातर थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों तक ही सीमित थी। बतौर उदाहरण, मद्रास नगर में शाखाओं की संख्या सबसे ज़्यादा थी, लेकिन बम्बई, उत्तर प्रदेश के नगरों और गुजरात के ग्रामीण इलाकों की शाखाएं काफ़ी सक्रिय थीं, हालांकि उनकी संख्या कम थी। इन सारी गतिविधियों का एकमात्र लक्ष्य था होम रूल की मांग के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन छेड़ना। इसके लिए राजनीतिक शिक्षा देना और राजनीतिक बहस शुरू करना बहुत ज़रूरी था। अरुणडेल ने न्यू इंडिया के माध्यम से अपने समर्थकों को राजनीतिक बहस छेड़ने, राष्ट्रीय राजनीति के बारे में जानकारी देने वाले पुस्तकालयों की स्थापना, छात्रों को राजनीतिक शिक्षा देने के लिए कक्षाओं का आयोजन, पर्चे बांटने, चंदा इकट्ठा करने, सामाजिक कार्य करने, राजनीतिक सभाओं के आयोजन, दोस्तों के बीच होम रूल के समर्थन में तर्क देने तथा उन्हें आंदोलन में भागीदार बनाने के लिए कार्य करने को कहा। कई शाखाओं ने इन पर अमल किया। राजनीतिक बहस चलाने पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। होम रूल का प्रचार कितना तेज हुआ, इसका अंदाज इसी तथ्य से लगा सकते हैं कि सितंबर 1916 तक, एनी बेसेंट की लीग की स्थापना तक, प्रचार फंड से छापे जाने वाले 3 लाख पर्चे बांटे जा चुके थे। यह प्रचार फंड कुछ महीने पहले ही स्थापित किया गया था। इन पर्चों में तत्कालीन सरकार का कच्चा चिट्ठा होता था और स्वराज के समर्थन में तर्क दिए जाते थे। एनी बेसेंट की लीग की स्थापना के बाद इन पर्चों को फिर छापा गया। कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी इनका प्रकाशन हुआ। साथ साथ जनसभाओं का आयोजन और भाषण का क्रम भी जारी रहा। जब भी किसी मुद्दे को लेकर देशव्यापी प्रतिरोध का आह्वान किया जाता, लोग लीग की सारी शाखाएं इसका समर्थन करती। नवंबर 1916 में जब एनी बेसेंट पर बेरार व मध्य प्रांत में जाने पर प्रतिबंध लगाया गया, तो अरुणडेल की अपील पर लीग की तमाम शाखाओं ने विरोध बैठकें आयोजित की और वायसराय तथा गृह सचिव को विरोध प्रस्ताव भेजे। इसी तरह 1917 में जब तिलक पर पंजाब और दिल्ली जाने पर प्रतिबंध लगाया गया, तो पूरे देश में विरोध बैठकें हुई। लीग की तमाम शाखाओं ने इसका डटकर विरोध किया। कांग्रेस की अकर्मण्यता से क्षुब्ध अनेक नरमपंथी कांग्रेसी भी होम रूल आंदोलन में शामिल हो गए। गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग का सदस्य बनने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उन्होंने जनता के बीच भाषण देकर और पर्चे बांटकर होम रूल आंदोलन का समर्थन किया। उत्तर प्रदेश में अनेक नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने लखनऊ कांग्रेस सम्मेलन 1916 की तैयारी के सिलसिले में होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं के साथ गाँव कस्बों का दौरा किया। इनकी ज़्यादातर बैठकें स्थानीय अदालतों के पुस्तकालयों में होती, जहां छात्र, व्यवसायी व अन्य पेशों से जुड़े हुए लोग इकट्ठा होते, और अगर बैठक किसी बाजार के दिन होती तो इसमें गांवों से आए किसान भी शरीक होते। इन बैठकों में हिंदुस्तान की गरीबी और बेहाली का मुद्दा उठाया जाता, अतीत की समृद्धि की याद दिलाई जाती और यूरोप के स्वतंत्रता आंदोलनों पर प्रकाश डाला जाता, उससे प्रेरणा लेने की अपील की जाती। इन बैठकों में हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। नरमपंथियों का होम रूल लीग को समर्थन देना कोई अचरज की बात नहीं थी, क्योंकि लीग नरमपंथियों के राजनीतिक प्रचार व शैक्षणिक कार्यक्रमों को ही असली जामा पहना रही थी। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का एक अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने तो एक परंपरा ही बना दी, जिस पर कांग्रेस बहुत साल तक टिकी रही। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिससे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया तो कुछ ने होम रूल स्पेशल कहा। अरुणडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने की हर संभव कोशिश करें।